एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे का अंजाम, होगी हिफाजत दुश्मनों से, ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सिजदे का अंजाम, होगी हिफाजत दुश्मनों से, ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम। मौत की लहरों ने मेरे चारों ओर डाला था घेरा, मेरे भरा था डर का अंधेरा, मौत की लहरों ने मेरे चारों ओर डाला था घेरा, शैतानों ने दिल में मेरे भरा था डर का अंधेरा, यीशु ने जब जोत जलाई काली शाम, यीशु ने जब जोत जलाई हो गई रोशन काली शाम, नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखो का फंदा था आगे, चारों ओर से उलझा रहे थे दरक ले जाने वाले धागे। देखा तो मैंने ये पाया, मौत का फंदा था आगे, चारों ओर से उलझा रहे थे दरक ले जाने वाले धागे। यीशु ने हाथ बढ़ा के ले लिया मुझको, बाहों में थाम। यीशु ने हाथ बढ़ा के ले लिया मुझको, बाहों में थाम। नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा, देखूंगा सजदे का से। ऐसा पाक है यीशु का नाम, ऐसा पाक है यीशु का नाम, नाम खुदा का लेता रहूंगा, नाम खुदा का लेता रहूंगा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर से आते हैं। हमारे मनों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा दे पिता, कि हम तेरे राह में चल सके। मेरे श्रोताओं के संग हो, उन्हें और उनके परिवार को तो बहुत आयत से आशीष दे, और विशेषकर इस समय जब वे तेरे वचनों को सुनते हैं, उन्हें तेरे वचन के द्वारा बहुत आय से आशीष दे, और हमें आत्मिक बातों में बढ़ते जाने के लिए मदद कर पिता। मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है देने के लिए मांगना भाग दो। इससे पहले हम लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे, इस विषय में बातें कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने सीखा कि यीशु मसीह हमें कहता है कि हम हमारे पिता से मांगे, विश्वास के साथ मांगे, और वह हमें देने के लिए बहुत ही अधिक इच्छुक है। परंतु हमें यीशु मसीह के जैसा मन से हमें मांगना है, और हमें उसका आज्ञा को पालन करना है, और हम मांगे कि हम दूसरों को दे सके, ताकि उसका आशीष हम पर बरकरार रहे। आइए हम इन बातों के विषय में पढ़ते हुए सीखते हुए आगे जाएंगे, और आज कुछ और अधिक सीखेंगे। एक और बात है जिसे अक्सर वे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं जो प्रार्थना में प्रभु की तलाश करते हैं। क्या आप ईश्वर के साथ ईमानदार रहे हैं? भविष्यवक्ता मलाकी के जरिए प्रभु घोषणा करते हैं, तुम्हारे पुरखाओं के दिनों से ही तुम मेरी विधियों से दूर चले आए हो और उनका पालन नहीं किया। मेरी ओर फिरो और मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। लेकिन तुम कहते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य ईश्वर को लूटेगा? फिर भी तुमने मुझे लूटा है। लेकिन तुम कहते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंट में। हम पढ़ते हैं इसे मलाकी 3:7-8 में। यहाँ पर हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदारी होने के लिए सिखाया जा रहा है। हर आशीर्वाद के दाता के रूप में परमेश्वर हमारे पास मौजूद हर चीज का एक निश्चित हिस्सा मांगता है। सुसमाचार के प्रचार को बनाए रखने के लिए यह उसका प्रावधान है, और परमेश्वर को यह वापसी करके हमें उसके उपहारों के लिए अपनी प्रशंसा दिखानी चाहिए। लेकिन अगर हम उसे देने से पीछे रहते हैं, तो उसका जो उसका अपना है, तो हम उसका आशीर्वाद कैसे मांग सकते हैं? अगर हम संसारिक चीजों के प्रति बेवफा प्रबंधक हैं, तो हम उससे स्वर्ग की चीजों को सौंपने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि यही अनुत्तरित प्रार्थना का रहस्य हो। परंतु प्रभु अपनी महान दया में क्षमा करने को तैयार है, और वह कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, ताकि मेरे घर में भोजन हो, और अब इससे मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर ऐसा आशीष उड़ने लूंगा कि तुम उसे ग्रहण करने को जगह न पाओगे, और मैं तुम्हारे निमित्त भक्षक को डांटूंगा और वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा, और न तुम्हारी दाखलता अपने फल खेत में समय से पहले गिराएगी, और सब जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मलाकी 3:10-12। ऐसा ही परमेश्वर की हर दूसरी मांग के साथ भी है। उसके सभी उपहारों का वादा आज्ञाकारिता की शर्त पर किया गया है। परमेश्वर के पास उन लोगों के लिए आशीषों से भरा स्वर्ग है जो उसके साथ सहयोग करेंगे। जो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं वे पूरे भरोसे के साथ उसके वादों के पूरे होने का दावा कर सकते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर पर दृढ़ और विचल भरोसा दिखाना चाहिए। अक्सर हम विश्वास में कमी पाए जाते हैं। अक्सर वह हमारे विश्वास को परखने या हमारी इच्छा की वास्तविकता को परखने के लिए हमें उत्तर देने में देरी करता है। उसके वचन के अनुसार मांगने के बाद हमें उसके वादे पर विश्वास करना चाहिए और अपनी याचिकाओं को दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, जिसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ईश्वर यह नहीं कहते कि एक बार मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। वह हमें मांगने के लिए कहते हैं, अथक रूप से प्रार्थना में लगे रहो। लगातार मांगने से याचक का रवैया और भी गंभीर हो जाता है और उसे वह चीजें पाने की इच्छा बढ़ जाती है जिसके लिए वह मांगता है। मसीह ने लाजर की कब्र पर मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम्हें परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी, यूहन्ना 11:40। लेकिन बहुतों में जीवंत आस्था नहीं है। यही कारण है कि वे ईश्वर की शक्ति को अधिक नहीं देख पाते। उनकी कमजोरी उनके अविश्वास का परिणाम है। उन्हें ईश्वर के काम करने की अपेक्षा अपने काम पर अधिक भरोसा है। वे खुद को अपने भरोसे में रखते हैं। वे योजना बनाते हैं और योजना बनाते हैं लेकिन कम प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर पर उनका वास्तविक भरोसा कम होता है। उन्हें लगता है कि उनमें आस्था है लेकिन यह केवल क्षण भर का आवेग है। अपनी जरूरत या ईश्वर की जरूरत को समझने में विफल होते हैं। देने की इच्छा तो रखते हैं परंतु प्रभु के सम्मुख अपनी विनती रखने में दृढ़ नहीं रहते। हमारी प्रार्थनाएं उतनी ही ईमानदारी और दृढ़ता से होनी चाहिए जितनी उस जरूरतमंद दोस्त की प्रार्थना थी जिसने आधी रात को रोटियां मांगी थी। हम जितनी ईमानदारी और दृढ़ता से मांगेंगे मसीह के साथ हमारी आध्यात्मिक एकता उतनी ही नजदीक होगी। हमें ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ा है। हमारा काम प्रार्थना करना और विश्वास करना है। प्रार्थना के प्रति सहज रहें, प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर के प्रति सहज रहें और उसका सहयोग करें। ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम करते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:9। अपनी प्रार्थनाओं के अनुरूप बोलें और काम करें। इससे आप पर बहुत फर्क पड़ेगा कि क्या परीक्षण आपके विश्वास को सच्चा साबित करेगा या यह दिखलाएगा कि आपकी प्रार्थनाएं केवल दिखावा है। जब उलझने पैदा हो और मुश्किलें आपके सामने हो तो मदद के लिए मानवता की ओर ना देखें, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। दूसरों को अपनी मुश्किलें बताने की आदत हमें कमजोर बनाती है और उन्हें कोई ताकत नहीं देती। यह हमारी आध्यात्मिक कमजोरियों का बोझ उन पर डालता है जिसे वे दूर नहीं कर सकते। हम गलती करने वाले सीमित मनुष्य की ताकत चाहते हैं जबकि हमारे पास अचूक अनंत ईश्वर की ताकत हो सकती है। आपको बुद्धि के लिए पृथ्वी के छोर पर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर निकट है। यह आपकी वर्तमान या भविष्य की योग्यताएं नहीं है जो आपको सफलता दिलाएंगी, यह वह है जो प्रभु आपके लिए कर सकता है। हमें इस बात पर कम भरोसा होना चाहिए कि मनुष्य क्या कर सकता है और इस बात पर अधिक भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी आत्मा के लिए क्या कर सकता है। वह चाहता है कि आप विश्वास के द्वारा उसके पीछे पहुंचे। वह चाहता है कि आप उससे महान चीजों की अपेक्षा करें। वह आपको संसारिक और आध्यात्मिक मामलों में समझ देना चाहता है। वह बुद्धि को तेज कर सकता है। वह चातुर्य और कौशल दे सकता है। अपनी प्रतिभा को काम में लगाएं, परमेश्वर से बुद्धि मांगे और यह आपको दी जाएगी। मसीह के वचन को अपने आश्वासन के रूप में लें। क्या उसने आपको अपने पास आने के लिए आमंत्रित नहीं किया है? कभी भी अपने आप को निराशाजनक हतोत्साहित तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत कुछ खो देंगे। दिखावे को देखकर और जब कठिनाइयों और दबाव आते हैं तो शिकायत करके आप एक बीमार कमजोर विश्वास का सबूत देते हैं। बात करें और ऐसे कार्य करें जैसे कि आपका विश्वास अजय हो। प्रभु संसाधनों में समृद्ध है। वह दुनिया का मालिक है। विश्वास में स्वर की ओर देखें, उसकी ओर देखें जिसके पास प्रकाश और शक्ति और दक्षता है। सच्चे विश्वास में एक उत्साह, सिद्धांत की दृढ़ता और उद्देश्य की दृढ़ता होती है जिसे ना तो समय और ना ही परिश्रम कमजोर कर सकता है। तरुण तो थक जाएगा और श्रमित हो जाएगा और जवान पूरी तरह से गिर जाएगा, लेकिन जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपना बल नया कर लेंगे। वे उकाबों की तरह उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। यह प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर ने दिया है जिसे हम यशया 40 का 30 और 31 में पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास देने के लिए कोई आध्यात्मिक शक्ति या प्रकाश नहीं है। उन्हें अनुग्रह के सिंहासन पर अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने द्वारा किए गए हर वादे के पीछे खड़ा है। अपने हाथों में अपनी बाइबल लेकर कहें, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैं आपका वादा प्रस्तुत करता हूं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें ना केवल मसीह के नाम से प्रार्थना करनी चाहिए बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भी प्रार्थना करनी चाहिए। यह बताता है कि जब यह कहा जाता है कि आत्मा हमारे लिए ऐसी आहें भरकर विनती करती है जो बयान से बाहर हैं, रोमियो 8:26, ऐसी प्रार्थना का उत्तर देने में परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम मसीह के नाम पर ईमानदारी और तीव्रता के साथ प्रार्थना करते हैं तो उसी तीव्रता में परमेश्वर की ओर से एक प्रतिज्ञा होती है कि वह हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे द्वारा मांगे गए या सोचे गए से कहीं अधिक देने वाला है। यह प्रतिज्ञा भी हम पाते हैं, यह लिखा है इफिसियों 3:20 में। मसीह ने कहा है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो जो कुछ तुम चाहते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वे तुम्हारे हो जाएंगे, मरकुस 11:24। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हो, यूहन्ना 14:13। और प्रिय यूहन्ना, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अधीन बड़ी स्पष्टता और आश्वासन के साथ बोलता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है, और यदि हम जानते हैं कि वह हमारी सुनता है तो जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारे पास है जो कुछ हमने उसे मांगा है, 1 यूहन्ना 5:14-15। फिर यीशु के नाम में पिता से अपनी विनती करें। परमेश्वर उस नाम का सम्मान करता है। सिंहासन के चारों ओर इंद्रधनुष इस बात का आश्वासन है कि परमेश्वर सच्चा है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना ही बदलाव की छाया है। हमने उसके विरुद्ध पाप किया है और उसके अनुग्रह के अयोग्य हैं। फिर भी उसने स्वयं हमारे होंठों पर वह सबसे अद्भुत विनती डाली है, अपने नाम के कारण हमसे घृणा मत करो, अपने गौरव के सिंहासन को अपमानित मत करो, स्मरण करो, हमारे साथ अपनी वाचा को मत तोड़ो। यह हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 14:21 में। जब हम अपनी अयोग्यता और पाप को स्वीकार करते हुए उसके पास आते हैं तो उसने हमारी पुकार पर ध्यान देने का वचन दिया है। उसके सिंहासन का सम्मान उसके वचन की पूर्ति के लिए दांव पर लगा है। हारून की तरह जो मसीह का प्रतीक था, हमारे उद्धारकर्ता पवित्र स्थान में अपने हृदय पर अपने सभी लोगों के नाम धारण करते हैं। हमारे महान महायाजक उन सभी शब्दों को याद रखते हैं जिनके द्वारा उन्होंने हमें भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वह हमेशा अपनी वाचा के प्रति सचेत रहते हैं। जो कोई भी उसे खोजेगा वह उसे पा लेगा, जो कोई भी दस्तक देगा उसके लिए द्वार खुल जाएगा। कोई बहाना नहीं बनाया जाएगा, मुझे परेशान मत करो, द्वार बंद है, मैं इसे खोलना नहीं चाहता। किसी को कभी नहीं कहा जाएगा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो लोग भूखे लोगों को खिलाने के लिए आधी रात को भीख मांगते हैं वे सफल होंगे। दृष्टांत में जो अजनबी के लिए रोटी मांगता है उसे उतनी ही मिलती है जितनी उसे जरूरत होती है। और परमेश्वर हमें किस हद तक देगा ताकि हम दूसरों को दे सकें? मसीह के उपहार के माप के अनुसार, इफिसियों 4:7। स्वर्गदूत गहरी दिलचस्पी से देख रहे हैं कि मनुष्य अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। जब वे किसी को गलती करने वाले के लिए मसीह जैसी सहानुभूति दिखाते हैं तो वे उसके पास जाते हैं और उसे ऐसे शब्द याद दिलाते हैं जो आत्मा के लिए जीवन की रोटी के समान होंगे। इसलिए परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यह प्रतिज्ञा हम पाते हैं फिलिपियों 4:19 में। वह तुम्हारी गवाही को उसकी वास्तविकता और सच्चाई में आने वाले जीवन की शक्ति में शक्तिशाली बनाएगा। प्रभु का वचन तुम्हारे मुंह में सत्य और धार्मिकता के रूप में होगा। दूसरों के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने से पहले बहुत सारी गुप्त प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आत्माओं को बचाने के विज्ञान को समझने के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है। लोगों के साथ संवाद करने से पहले मसीह के साथ संवाद करें। स्वर्गीय अनुग्रह के सिंहासन पर दूसरों के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने से पहले बहुत सारी गुप्त प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आत्माओं को बचाने के विज्ञान को समझने के लिए बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है। लोगों के साथ संवाद करने से पहले मसीह के साथ संवाद करें। स्वर्गीय अनुग्रह के सिंहासन पर लोगों की सेवा करने के लिए तैयारी प्राप्त करें। अपने हृदय को ईश्वर के लिए, जीवित ईश्वर के लिए अपनी लालसा के लिए तोड़ दें। मसीह के जीवन ने दिखाया है कि ईश्वरीय प्रकृति का हिस्सा बनकर मानवता क्या कर सकती है। मसीह ने परमेश्वर से जो कुछ प्राप्त किया वह हमें भी मिल सकता है। तो मांगिए और आप पाएंगे। याकूब के दृढ़ विश्वास के साथ, एलिया की अधिक दृढ़ता के साथ ईश्वर ने जो वादा किया है उसे अपने लिए पाइए। ईश्वर की शानदार धारणाओं को अपने मन में समाहित होने दे। अपने जीवन को यीशु के जीवन से छिपे संबंधों से जुड़ने दे। जिसने अंधकार से प्रकाश को चमकने की आज्ञा दी वह आपके हृदय में चमकने के लिए तैयार है, ताकि यीशु मसीह के चेहरे में ईश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश दे सके। पवित्र आत्मा ईश्वर की बातों को ले जाएगा और उन्हें आपको दिखाएगा, उन्हें आज्ञाकारी हृदय में जीवित शक्ति के रूप में पहुंचाएगा। मसीह आपको अनंत की दहलीज तक ले जाएगा। आप पर्दे के पीछे की महिमा को देख सकते हैं और लोगों को उसकी पर्याप्तता को प्रकट कर सकते हैं, जो हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए हमेशा जीवित है। आज परमेश्वर का भंडार हमारे लिए अथाह है। वह हमें देना चाहता है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा, और हमें बुलाता है। वह हमें कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हमें विश्वास से मांगना है, हमें दृढ़ता से मांगना है, और हमें स्वार्थी रूप से नहीं मांगना है, बल्कि हमें मांगना है कि हम दूसरों का भलाई कर सके, और हमें ईमानदारी से मांगना है। हम बिना संकोच के उसके सिंहासन के समीप आए और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ देता है। उसका आशीष हमारे जीवन में भरपूराई से आएगा। आप सबों को वह बहुत आशीष देगा। आइए हम उसको उसके ऊपर विश्वास करें और उसके पास आए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचनों के लिए। तू महान है और तेरा भंडार अथाह है। तू हमें बहुत आशीष देना चाहता है पिता। हम प्रार्थना में मांगे और हम दृढ़ता से मांगे, हम बिना संकोच के मांगे, हम विश्वास से मांगे पिता, और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। तू देने के लिए तैयार है, जितना हम मांगते हैं उससे और अधिक देने के लिए तैयार है। हमारे जीवन को तू परिवर्तन कर दे पिता, कि हम आत्मिक राह में चले और तेरा आत्मा के द्वारा चलाए जाए, कि हम तेरा स्वर्ग आशीष को बहुतायत से पा सके और हमारा जीवन एक खुशहाल और आनंदित जीवन इस धरती पर हो, इस पृथ्वी पर हो पिता, और हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष लाने वाला हो। हम सबों को ऐसा रास्ता में चला और हम सबों को अनुग्रह के द्वारा ग्रहण करें। आमीन।
दिन रात शाम सवेरे झुकूं मैं आगे तेरे,
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।